गरुड़ की आंखें फैल गईं। उसने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। एक विशाल ध्वनि तरंग उससे टकराए। धमम, गरुड़ का शरीर नियंत्रण खो बैठा। वह हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा, एक प्राचीन वृक्ष से टकराया। वृक्ष बीच से टूट गया, धरती कांप उठी। मगरमच्छ बच गया, लेकिन वज्रकिन्नरी ने भी फल की ओर नहीं देखा। वह केवल मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने अभी खेल की पहली चाल चली हो। और तभी नीचे खड़े इंद्रहिरण ने अपना सिर उठाया। उसके सींगों में जमा ऊर्जा अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। नीली रोशनी धीरे धीरे सफेद होने लगी, उसके खुरों के नीचे की घास राख में बदलने लगी। कालिंदी का चेहरा बदल गया। अब ये भी आने वाला है। मंदाकिनी ने इंद्रहिरण की ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ हुआ था वह केवल प्रस्तावना थी, असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। इंद्रहिरण ने एक लंबी सांस ली, उसके नथुनों से सफेद प्रकाश निकला। उसके सींगों में संचित ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उनके चारों ओर का आकाश विकृत दिखाई देने लगा। फिर उसने पहला कदम बढ़ाया, धम्म, धरती कांपी। दूसरा कदम, धम्म, तीसरा, और अचानक वह गायब हो गया। मंदाकिनी की आंखें फैल गईं। क्या, वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दूर से विस्फोट की आवाज आई। धड़ाम, सैकड़ों मीटर दूर खड़ा एक विशाल वृक्ष बीच से टूट गया। उसके पीछे नीलवज्र गरुड़ दिखाई दिया। इंद्रहिरण उसके सामने खड़ा था, इतनी गति कि देखने वाली आंखें उसका मार्ग पकड़ ही नहीं पा रही थीं। गरुड़ ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। उसने अपने पंख फैलाए, बिजली फूटी, लेकिन इंद्रहिरण पहले ही वहां से हट चुका था। केवल एक प्रकाश रेखा पीछे रह गई। अगले ही पल वह मगरमच्छ के पास प्रकट हुआ। उसके सींग आगे झुके, धमम, टक्कर ऐसी थी जैसे कोई पर्वत किसी दूसरे पर्वत से टकरा गया हो। द्विशिर मगरमच्छ पीछे खिसक गया, उसके विशाल पंजों के नीचे धरती फट गई। लेकिन वह गिरा नहीं, उसके दोनों सिरों ने एक साथ गर्जना की। एक से जल निकला, दूसरे से अग्नि, दोनों धाराएं आपस में मिली और एक विशाल भाप तूफान बन गया। क्षणभर में पूरा क्षेत्र सफेद धुंध से ढक गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन ये धुंध साधारण नहीं थी। इसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति मिश्रित थी। जो भी इसके अंदर प्रवेश करता उसकी इंद्रियां भ्रमित होने लगती। कालिंदी का चेहरा गंभीर हो गया। चालाक, मंदाकिनी ने पूछा, क्या हुआ? मगरमच्छ ने युद्ध भूमि बदल दी है, अब केवल शक्ति नहीं संवेदनाएं भी लड़ेंगी। उसी समय धुंध के भीतर से बिजली चमकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नीलवज्र गरुड़ ने धुंध को चीरने का प्रयास शुरू कर दिया था। उसकी प्रत्येक बिजली दर्जनों वृक्षों को राख में बदल रही थी, लेकिन लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टनन, वज्रकिन्नरी का गीत फिर गूंजा। इस बार उसका स्वर पहले से अधिक तीव्र था। उसके चारों ओर सैकड़ों विद्युत चक्र घूमने लगे। वह हवा में उठ गई। उसके लंबे रजत केश पीछे लहरा रहे थे, और उसका गीत अब केवल संगीत नहीं था, वह युद्ध बन चुका था। प्रत्येक सुर एक प्रहार, प्रत्येक ध्वनि एक अस्त्र। एक तीव्र कंपन तर्क धुंध के भीतर गई, और अगले ही क्षण धमम, दूर कहीं विस्फोट हुआ। द्विशिर मगरमच्छ का विशाल शरीर धुंध से बाहर फेंका गया। उसके शल्कों पर दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन उसी समय इंद्रहिरण फिर प्रकट हुआ। उसके सींगों से सफेद ऊर्जा फूटी। वह सीधा वज्रकिन्नरी की ओर बढ़ा। गति इतनी अधिक थी कि हवा उसके पीछे फट रही थी। किन्नरी मुस्कुराई, उसने गीत की दिशा बदली, एक नई ध्वनि निकली। अदृश्य दीवार, इंद्रहिरण उससे टकराया। धमम, ऊर्जा का गोला बना। लेकिन अगले ही पल चटाक, दीवार टूट गई। किन्नरी की आंखों में पहली बार आश्चर्य उभरा। इंद्रहिरण की शक्ति उसकी अपेक्षा से अधिक थी। वह पीछे हटने को मजबूर हुई। उसी क्षण आकाश काला हो गया। सभी ने ऊपर देखा, गरुड़। वह फिर ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके शरीर के चारों ओर हजारों बिजली की धाराएं घूम रही थी। पूरा आकाश उसके अधीन प्रतीत हो रहा था। बादल घूम रहे थे, वायु गर्जना कर रही थी, और उसके बीच वह किसी प्राचीन देवता जैसा दिख रहा था। फिर उसने पंख झटके, बस एक बार, और हजारों वज्र नीचे गिरे। धड़ाम, 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 पूरा वन विस्फोटों से भर गया। मगरमच्छ पीछे हटने को मजबूर हुआ। इंद्रहिरण अपनी गति से बच निकला। वज्रकिन्नरी ने ध्वनि कवच बनाया, लेकिन युद्धभूमि बिखरने लगी। सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष गिर गए, पर्वतों की चोटियां टूटने लगी, नदियों का प्रवाह बदल गया, विश्ववृक्ष के आसपास की धरती तक फट गई। फिर भी विश्ववृक्ष स्वयं अचल खड़ा था, मानो ये सब उसके लिए केवल बच्चों का खेल हो। और उसके मध्य वह स्वर्णिम फल अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा था, मानो युद्ध की प्रत्येक ऊर्जा उसे और परिपक्व बना रही हो। तभी मंदाकिनी की भौहें सिकुड़ी। कालिंदी, हूँ, एक बात अजीब नहीं लग रही? कालिंदी ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया, और फिर वह भी चुप हो गई। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक एक प्राणी ने लगभग कोई आक्रमण नहीं किया था। मयूर वज वह अब भी वहीं खड़ा था, विश्ववृक्ष की एक विशाल जड़ के पास, शांत स्थिर। उसके दिव्य पंख बंद थे, उसकी आंखें आधी मूंदी हुई थीं, मानो उसके आसपास हो रहे विनाश से उसे कोई सरोकार ही न हो। लेकिन तभी उसकी आंखें पूरी खुलीं, उनमें एक विचित्र प्रकाश चमका और पहली बार उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम। लेकिन उसी क्षण गरुड़, मगरमच्छ, वज्रकिन्नरी और इंद्रहिरण चारों ने एक साथ उसकी ओर देखा, जैसे उन्हें अचानक किसी अदृश्य खतरे का आभास हुआ हो। युद्ध एक पल को धीमा पड़ गया और मयूर वज अब मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान न विजय की थी, न अहंकार की, वह उस शिकारी की मुस्कान थी जो पूरे समय छाया में बैठकर शिकारियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता रहा हो। कालिंदी का हृदय एक पल को सिहर उठा, अब समझ में आया। मंदाकिनी ने उसकी ओर देखा, क्या ये शुरू से लड़ ही नहीं रहा था? कालिंदी की आंखें मयूर वज्र पर टिकी थीं, ये प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय नीलवज्र गरुड़ ने एक तीखी गर्जना की, उसे भी अब खतरा समझ आ चुका था। यदि वह और देर करता तो सबसे बड़ा अवसर उसके हाथ से निकल सकता था। उसने अपने विशाल पंख फैलाए, आकाश में जमा समस्त बिजली उसकी ओर उमड़ने लगी, नीली सफेद बैंगनी, हजारों विद्युत धाराएं उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। उसकी चमक इतनी बढ़ गई कि उसे सीधे देखना कठिन हो गया। फिर वह नीचे झपटा, लेकिन इस बार लक्ष्य फल नहीं था, मयूर वज्र था, धड़ाम। गरुड़ बिजली के धूमकेतु की तरह नीचे आया, उसकी गति देखकर हवा चीख उठी, उसके पीछे विद्युत की एक लंबी रेखा बन गई। मगर मयूर वज्र हिला तक नहीं, वह वहीं खड़ा रहा, स्थिर शांत। और जब गरुड़ केवल कुछ हाथ दूर रह गया, तब उसने पहली बार अपना एक पंख खोला, बस एक। पूरी युद्धभूमि में एक विचित्र कंपन फैल गया, न बिजली, न अग्नि, न जल, कुछ और, कुछ ऐसा जिसे कालिंदी शब्दों में नहीं बांध सकी। गरुड़ की आंखें फैल गईं, उसका शरीर अचानक धीमा पड़ गया, मानो उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई हो। उसी क्षण द्विशिर मगरमच्छ ने अवसर देखा, उसके दोनों सिरों ने एक साथ गर्जना की, जल और अग्नि फिर एक हुए, लेकिन इस बार वे आपस में टकराए नहीं, वे एक दूसरे में विलीन हो गए, एक विशाल नीलरक्तिम गोला बना। उस गोले के भीतर इतनी ऊर्जा थी कि उसके आसपास का आकाश विकृत होने लगा। फिर मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया, धम्मम, ऊर्जा गोला सीधे मयूर वज्र की ओर गया। उसके मार्ग में जो कुछ आया वह नष्ट हो गया, वृक्ष, चट्टाने, पहाड़ के टुकड़े, सब राख बनते चले गए। लेकिन उसी क्षण वज्रकिन्नरी भी चल पड़ी, उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी, गंभीरता थी। वह समझ चुकी थी कि यदि मयूर वज्र को नहीं रोका गया तो फल उसी का होगा। उसने दोनों हाथ फैलाए और अपना सबसे शक्तिशाली गान प्रारंभ किया, टनन। पहला स्वर निकला, आकाश कांप गया, दूसरा स्वर, धरती हिल गई, तीसरा, वन के सभी जीव एक साथ मौन हो गए। फिर सैकड़ों ध्वनितरंगे एकत्र हुईं और एक विशाल अदृश्य भाले का रूप लेने लगीं, ध्वनि का भाला, वज्र का भाला, वह भी मयूर वज्र की ओर बढ़ा। और तभी इंद्रहिरण भी रुका नहीं, उसके सींगों में संचित सारी ऊर्जा अब विस्फोट के कगार पर थी, उसकी रजत त्वचा से प्रकाश फूट रहा था। वह दौड़ा नहीं, मानो प्रकाश स्वयं दौड़ पड़ा हो। क्षण भर में वह युद्धभूमि के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया, उसके पीछे केवल सफेद प्रकाश बचा, और अगले ही पल वह भी मयूर वज्र के सामने था। चार दिशाएं, चार महाशक्तियां, चार विनाशकारी आक्रमण, सभी एक ही लक्ष्य पर। कालिंदी की सांस रुक गई, मंदाकिनी ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया, अर्जुन उस चट्टान की आड़ से ये सब चुपचाप देख रहा था, ये बच नहीं पाएगा। फिर मयूर वज्र ने दूसरा पंख खोला और दुनिया बदल गई, धमम, आवाज बहुत छोटी थी लेकिन प्रभाव अकल्पनीय। उसके पंखों पर बने हजारों नेत्र एक साथ चमक उठे, प्रत्येक नेत्र किसी जीवित चेतना जैसा प्रतीत हो रहा था, वे केवल चित्र नहीं थे, वे देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, निर्णय कर रहे थे। फिर उन सभी नेत्रों से एक अदृश्य स्पंद निकला, वह स्पंद हवा में फैला, धरती में उतरा, आकाश में उठा और पूरे क्षेत्र को अपने भीतर समेट लिया। क्षण भर में गरुड़ की गति धीमी पड़ गई, मगरमच्छ का ऊर्जा गोला डगमगाने लगा, वज्रकिन्नरी के सुर टूट गए, इंद्रहिरण के कदम भारी हो गए, मानो किसी ने उनकी चेतना पर अदृश्य भार रख दिया हो। लेकिन यह अंत नहीं था, मयूर वज्र ने दोनों पंख पूरी तरह फैला दिए और पहली बार उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट हुई, हजारों नेत्रों से प्रकाश निकला, न तेज, न चकाचौंध, फिर भी उससे नजर हटाना असंभव था। मंदाकिनी का शरीर कांप उठा, उसे लगा जैसे कोई उसके मन के भीतर झांक रहा हो, उसकी स्मृतियां, उसके भय, उसके रहस्य सब उस प्रकाश के सामने नग्न हो गए हों। उसने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली, कालिंदी की स्थिति भी अलग नहीं थी, यह उसकी आवाज कांप गई, ये चेतना का अधिकार है। अर्जुन को भी वह अनुभूति हुई, जैसे उसके भीतर जो कुछ था, जो छुपा था, जो अनकहा था, वह सब उन हजारों नेत्रों के सामने नग्न हो गया हो। उसने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया। तभी धम्मम, चारों आक्रमण एक साथ मयूर वज्र तक पहुंचे और पूरा संसार सफेद प्रकाश में डूब गया। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी गर्जना सैकड़ों कोस दूर तक सुनाई दी। पर्वत कांप उठे, नदियां उफन गईं, आकाश फटता हुआ प्रतीत हुआ। मंदाकिनी और कालिंदी अपनी आंखें ढकने पर मजबूर हो गईं। अर्जुन ने अपना चेहरा एक विशाल चट्टान के पीछे कर लिया, आंखें बंद, भुजाएं ऊपर। उस प्रकाश से बचने का इससे अधिक कोई उपाय नहीं था। कुछ क्षण तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल प्रकाश, केवल गर्जना, केवल विनाश। और जब वह प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा, सभी की निगाहें उसी स्थान पर टिक गईं जहां मयूर वज्र खड़ा था, क्योंकि यदि वह जीवित बच गया था तो ये युद्ध समाप्त होने वाला था। धीरे धीरे प्रकाश छटने लगा, ऊर्जा की उग्र लहरें शांत होने लगीं। धूल और राख का विशाल बादल हवा में तैर रहा था। कुछ क्षणों तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर एक आकृति उभरी, मयूर वज्र। वह भी वहीं खड़ा था, अचल, अडिग। उसके चारों ओर एक विशाल वृत्त बना हुआ था जहां धरती तक अक्षत थी, जबकि उसके बाहर विनाश था, संपूर्ण विनाश। सैकड़ों वृक्ष नष्ट हो चुके थे, चट्टाने पिघल चुकी थी, धरती जगह जगह फट गई थी, लेकिन मयूर वज्र के आसपास का क्षेत्र वैसा ही था जैसा पहले था, मानो स्वयं संसार ने उस स्थान को छूने से इनकार कर दिया हो। नीलवज्र गरुड़ की आंखों में पहली बार अविश्वास उभरा। द्विशिर मगरमच्छ के दोनों सिर स्तब्ध रह गए। वज्रकिन्नरी का गीत रुक चुका था और इंद्र हिरण, उसने एक कदम पीछे हटा लिया। चारों समझ गए उनका संयुक्त प्रहार भी पर्याप्त नहीं था। मयूर वज्र ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, कोई क्रोध नहीं, केवल शांति। वही शांति जो किसी ऐसे प्राणी में होती है जिसे अपनी शक्ति सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी क्षण विश्व वृक्ष कांपा, पूरे वन में एक गहरी गूंज फैल गई। धम्म धम्म धम्म, वह स्वर्णिम फल अब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। उसकी चमक बढ़ती जा रही थी, सुनहरी ऊर्जा उसके भीतर घूम रही थी, मानो एक छोटा सूर्य जन्म लेने वाला हो। और फिर लता कांपी, बस एक बार सभी की सांसें रुक गईं। यही क्षण था, नीलवज्र गरुड़ सबसे पहले हरकत में आया। उसने अपने पंखों में बची हुई समस्त शक्ति जुटाई, बिजली फिर चमकी, वह फल की ओर झपटा। लगभग उसी समय इंद्रहिरण दौड़ा, द्विशिर मगरमच्छ उछला, वज्रकिन्नरी ने अंतिम सुर छेड़ा। चारों ने एक साथ अंतिम प्रयास किया। यह अब युद्ध नहीं था, यह भाग्य की दौड़ थी। फल धीरे धीरे लता से अलग हो रहा था, एक इंच, दो इंच, तीन। समय मानो धीमा पड़ गया, कालिंदी सांस लेना भूल गई, मंदाकिनी की आंखें फल पर जमी थीं, अर्जुन की दृष्टि उस फल पर टिकी थी। उसके भीतर भी वह खिंचाव था, वही जो यहां उपस्थित प्रत्येक जीव को महसूस हो रहा था, उस शक्ति को पाने की इच्छा जिसे पाने के लिए ये प्राणी अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे थे। लेकिन उसे अपनी सीमाएं पता थीं, यहां जो शक्तियां लड़ रही थीं उनके सामने वह भी बहुत छोटा था। आगे बढ़ना मृत्यु को निमंत्रण देना होता। उसने चट्टान की आड़ में रहना चुना, गरुड़ सबसे निकट था, उसके पंजे फल को छूने ही वाले थे। लेकिन तभी मयूर वज्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम, और फिर उसने अपने पंख पूरी तरह फैला दिए। पूरे वन में वही रहस्यमय स्पंद फिर फैला, लेकिन इस बार वह पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। धम्म, समय रुक गया, सचमुच कम से कम ऐसा ही महसूस हुआ। गरुड़ हवा में स्थिर हो गया, उसके पंख आधे खुले रह गए, मगरमच्छ की छलांग अधूरी रह गई, वज्रकिन्नरी का स्वर हवा में जम गया, इंद्रहिरण की गति थम गई, सब कुछ रुक गया। हवा, धूल, ऊर्जा, ध्वनि, यह कोई समय शक्ति नहीं थी, यह चेतना पर इतना गहरा प्रभाव था कि प्रत्येक जीव एक पल के लिए स्वयं को भूल गया। एक क्षण, एक श्वास, बस उतना ही, लेकिन कभी भी उतना ही पर्याप्त होता है। मयूर वज्र आगे बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके आसपास पूरा संसार स्थिर पड़ा था, और उसी समय स्वर्णिम फल लता से अलग हुआ, वह हवा में तैरने लगा, मानो स्वयं निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। मयूर वज्र उसके सामने पहुंचा, उसने अपनी गर्दन बढ़ाई और फल को पकड़ लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, मानो ये सब पहले से तय हो। फिर उसने फल निगल लिया, क्षण भर के लिए संसार मौन हो गया, पूर्ण मौन। फिर विश्व वृक्ष जाग उठा, उसकी प्रत्येक शाखा प्रकाश से भर गई, उसकी जड़ों से सुनहरी ऊर्जा फूट निकली, पूरा वन चमकने लगा, आकाश तक स्वर्णिम हो उठा, और मयूर वज्र के शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। उसके पंखों पर बने हजारों नेत्र एक एक कर जगमगाने लगे, उसकी आभा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जब तक कि उसे सीधे देखना असंभव न हो गया। नीलवज्र गरुड़ ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया, द्विशिर मगरमच्छ पीछे हट गया, वज्रकिन्नरी ने मौन स्वीकार कर लिया। इंद्रहिरण स्थिर खड़ा रहा। पराजय, किसी ने शब्द नहीं कहा, फिर भी सब समझ गए। उत्तराधिकारी चुन लिया गया था, विश्ववृक्ष का निर्णय हो चुका था। ऊपर आकाश में स्वर्णिम प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उठा और पूरे वन में एक प्राचीन गूंजती हुई अनुभूति फैल गई, मानो स्वयं प्रकृति नए संरक्षक का स्वागत कर रही हो। कालिंदी ने धीरे से सांस छोड़ी। समाप्त। मंदाकिनी अभी भी मयूर वज्र को देख रही थी। उसकी आंखों में विस्मय था। नहीं, उसने फुसफुसा कर कहा, मुझे लगता है। उसकी दृष्टि उस दिव्य मयूर पर टिकी रही जिसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। ये तो केवल शुरुआत है, अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी छठी इंद्रिय, वह रहस्यमय चेतावनी जो उसे कभी भी बिना कारण जगा देती थी, वह अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसकी छाती के बीचों बीच एक हल्का अनिश्चित कंपन था, जैसे कुछ और होने वाला हो। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। युद्ध समाप्त हो चुका था, विश्ववृक्ष का निर्णय हो चुका था, फिर भी वन में फैला मौन सामान्य नहीं था। वह उस प्रकार का मौन था जो किसी बड़ी घटना के बाद नहीं, बल्कि किसी और भी बड़ी घटना से ठीक पहले उतरता है। मंदाकिनी की दृष्टि अब भी मयूर वज्र पर टिकी हुई थी। ये तो केवल शुरुआत है, उसके शब्द हवा में खो गए। उसी क्षण अर्जुन की छाती के भीतर एक तीखा कंपन उठा। धक, वह अनायास तंग गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, उसकी छठी इंद्रिय, वह रहस्यमय चेतावनी जिसने उसे कई बार मृत्यु से बचाया था, फिर सक्रिय हो उठी थी। लेकिन इस बार अनुभूति अलग थी। ये भय नहीं था, ये किसी शत्रु की उपस्थिति भी नहीं थी। यह ऐसा था मानो कोई विशाल परिवर्तन घटने वाला हो, कोई ऐसी घटना जिसकी उसने कल्पना तक न की हो। धक धक धक, उसकी छाती के बीचों बीच कंपन बढ़ता गया। अर्जुन ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी दृष्टि केवल मयूर वज्र पर थी। कुछ, वह धीरे से बोला, कुछ अभी बाकी है। उसी समय मयूर वज्र के शरीर से निकलती स्वर्णिम आभा अचानक बदल गई। पहले वह बाहर फैल रही थी, अब वह वापस भीतर सिमटने लगी। मंदाकिनी ने यह सबसे पहले देखा। रुको, उसकी आंखें फैल गईं। यह क्या कर रहा है? स्वर्णिम प्रकाश अब मयूर वज्र के चारों ओर घूम रहा था, चक्र बनाता हुआ, परत दर परत शक्ति का घनत्व बढ़ता जा रहा था, इतना कि उसके आसपास की हवा तक विकृत होने लगी। नीलवज्र गरुड़ ने धीरे से एक कदम पीछे लिया। द्विशिर मगरमच्छ के दोनों सिर सतर्क हो गए। वज्रकिन्नरी की आंखों से पहली बार वास्तविक गंभीरता झलकी, क्योंकि वे सभी महसूस कर रहे थे, ये सामान्य उत्क्रांति नहीं थी। विश्ववृक्ष की ऊर्जा किसी और दिशा में जा रही थी। धम्म। विश्ववृक्ष की एक शाखा चमकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्षणभर में पूरा वृक्ष सुनहरे प्रकाश से जगमगाने लगा। उसकी जड़ों से ऊर्जा उठी, तने में समाई, शाखाओं में दौड़ी, और अंततः सारी ऊर्जा मयूर वज्र की ओर बहने लगी। पूरा वन कांप उठा। अर्जुन का हृदय और तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी चेतना किसी अदृश्य शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर मयूर वज्र के पंख हिले, धीरे, बहुत धीरे, एक एक करके वे विशाल पंख सिकुड़ने लगे। उन पर बने हजारों नेत्र धुंधले पड़ने लगे, उनकी दिव्य चमक भीतर समाने लगी। नीलवज्र गरुड़ की आंखों में अविश्वास उभरा। द्विशिर मगरमच्छ की गर्जना अधूरी रह गई। ऐसा रूपांतरण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मयूर वज्र का शरीर बदल रहा था, उसकी ऊंचाई कम होने लगी, विशाल पंख प्रकाश में विलीन होने लगे, नीले, स्वर्णिम और रजत रंग की ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती रही, मानो कोई अदृश्य शिल्पकार नई आकृति गढ़ रहा हो। फिर उसका दिव्य मस्तक झिलमिलाया, चोंच विलीन हुई, पंखों से ढका शरीर बदलने लगा, प्रकाश और ऊर्जा की परतें एक नई संरचना बुनने लगी। पूरा वन स्तब्ध था, कोई हिला तक नहीं, कोई सांस तक ऊंची नहीं ले रहा था। और फिर प्रकाश का एक अंतिम विस्फोट हुआ। धम्म। क्षणभर के लिए सभी की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने दोबारा देखा, मयूर वज्र वहां नहीं था। उस स्थान पर एक मानवीय आकृति खड़ी थी, एक स्त्री, लंबे गहरे नीले केश उसकी कमर से नीचे तक बह रहे थे, उनमें स्वर्णिम आभा की महीन रेखाएं चमक रही थीं। उसकी त्वचा पर हल्की दिव्य आभा थी। उसकी आंखें, वे आंखें साधारण नहीं थीं, उनकी गहराई में वही हजारों दृष्टियां छिपी थीं जो कभी मयूर वज्र के पंखों पर अंकित थीं, मानो असंख्य चेतनाएं एक साथ वहां से संसार को देख रही हों। उसके वस्त्र स्वयं ऊर्जा से निर्मित प्रतीत हो रहे थे, नीले, रजत और स्वर्णिम प्रकाश की परतें उसके चारों ओर लहरा रही थीं। वह शांत खड़ी थी, अचल, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा वन झुका हुआ प्रतीत हो रहा था। विश्ववृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे नीचे झुक गईं, जैसे वह उसका स्वागत कर रहा हो। मंदाकिनी ने सांस रोक ली। एक, उसकी आवाज फुसफुसाहट से अधिक नहीं थी, एक स्त्री, कालिंदी भी मौन थी। वह हजारों वर्षों की स्मृतियों में खोज रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई उल्लेख याद नहीं आ रहा था। दिव्य पशुओं का रूपांतरण असंभव नहीं था, पर विश्ववृक्ष के उत्तराधिकारी का इस प्रकार मानव रूप धारण करना ये कुछ और था, कुछ अत्यंत दुर्लभ। अर्जुन की छठी इंद्रिय अब भी शांत नहीं हुई थी, बल्कि वह और अधिक तीव्र हो गई थी, क्योंकि उसी क्षण उस स्त्री ने पहली बार सिर घुमाया और उसकी दृष्टि सीधे अर्जुन पर आकर ठहर गई। पूरा वन जैसे गायब हो गया, न कालिंदी, न मंदाकिनी, न विश्ववृक्ष, केवल वे दो। एक पल, दो पल, फिर उस स्त्री की दृष्टि एक पल के लिए अर्जुन पर ठहरी, फिर बिना कुछ कहे उसने धीरे से मुंह फेर लिया। उसके लंबे नीले केश कंधों पर लहराए और उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक ऐसी भावना झलकी जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। लेकिन अर्जुन की दृष्टि एक पल के लिए उसकी कलाई पर रुक गई। एक कंगन, वह बनावट, वह धातु का विशेष रंग, वह सूत्र कार्य जो उसने पहले कहीं देखा था, नहीं, जिसे उसने स्वयं किसी और जन्म में जाना था, और उस पर उकेरा हुआ एक नाम, सब कुछ एक पल के लिए धुंधला पड़ गया। वह घना जंगल जो सदा पेड़ों की छत के नीचे डूबा रहता था, उसमें कुछ क्षणों के लिए पूर्ण प्रकाश हुआ था, दिन जैसा, सूर्य जैसा। और जहां वे जीव थे वहां जमीन में एक गहरा गड्ढा था, इतना गहरा कि उसमें से दूसरी दुनिया दिखती हो जैसे। इधर रूपांतरण, वह भीतर से था, बाहर से धीरे धीरे दिखा, उसके पंख सिकुड़े, उसका रूप बदला। वह आभा जो उसके चारों ओर थी सिमटी, सघन हुई, और उससे जो उभरा वह था एक मानवीय आकृति, एक स्त्री। लेकिन रूपांतरण अधूरा था, उसके शरीर के कुछ हिस्सों में अभी भी मयूरूर्जा थी जो नई मानव देह में ठीक से नहीं समाई थी। वह डगमगाए और बाकी जीवों ने देखा, जो खोया था वह केवल फल नहीं था, लाखों वर्षों की साधना का अवसर, एक ऐसा क्षण जो फिर कभी नहीं आता। द्विशिर मगरमच्छ के दोनों सिरों ने एक दूसरे को देखा, वह सहमति जो बिना शब्दों के होती है, यदि हम नहीं जीत सकते तो वह भी नहीं जीतेगी। वेलप के कुछ अन्य जीव भी उसके साथ थे, वे जो पहले ही पराजित हो चुके थे, अब वे सब धीरे धीरे आगे बढ़े और उस मोरकन्या को चारों ओर से घेरने लगे, मानो उसे बच निकलने का कोई मार्ग ही न देना चाहते हों। और उनके भीतर उनके चक्र, वे ऊर्जा केंद्र जो जीव की जीवन शक्ति होते हैं, वे टूट रहे थे, जानबूझकर वे अपने आप को तबाह कर रहे थे, उस विस्फोट से मोरकन्या को भी तबाह करने के लिए। मंदाकिनी का चेहरा फीका पड़ गया, ये तो कालिंदी ने उसका हाथ पकड़ा, और तभी दूसरी तरफ उस विशाल चट्टान की आड़ से एक आकृति बाहर आई, धीमे कदमों से, बिना किसी जल्दबाजी के। अर्जुन, अब तक वह दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन इस बार वह स्वयं सामने आ गया। उसने उस मोरकन्या को देखा था उस क्षण से जब वह फल से रूपांतरित हुई थी, उसने वह कंगन देखा था हाथों में वर्षा की बूंदों में चमकता, वह कंगन, वह बनावट, वह सूत्र कार्य, वह धातु का विशेष रंग, और उस पर उकेरा हुआ एक नाम जो केवल वह जानता था, माधवी। यह विचार आया और इसके आगे कोई तर्क नहीं था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, क्षण भर में उसकी हथेलियों के बीच काली अग्नि प्रकट हुई, वह रहस्यमय शक्ति जो उसके पिछले जन्म की अथाह गहराइयों से जुड़ी थी, उसी के साथ स्वर्गीय बिजली की चमक भी उसके चारों ओर लिपट गई। अगले ही पल अग्नि और बिजली एक दूसरे में विलीन होने लगी। अर्जुन ने दोनों हाथ फैलाए और हवा में एक वृत्त खींच दिया। जैसे ही वह वृत्त पूर्ण हुआ, काली अग्नि और स्वर्गीय विद्युत उससे फूट निकली, एक दिव्य सुरक्षा कवच का रूप धारण करती हुई। क्षण भर में वह चमकता हुआ कवच मोरकन्या के चारों ओर फैल गया, उसे चारों दिशाओं से सुरक्षित घेरे में लेता हुआ। एक सुरक्षा घेरा, विस्फोट, वह अपनी इस जन्म की सबसे बड़ी ध्वनि थी। उस घने जंगल में जो हमेशा से पेड़ों की छत के नीचे था, एक क्षण के लिए रोशनी हुई, पूर्ण, दिन जैसी, सूर्य जैसी, और फिर एक गर्जन जो केवल कानों में नहीं छाती में भी महसूस हुआ, और फिर वर्षा। जहां वे जीव थे वहां जमीन में एक गड्ढा था गहरा, उसमें से दूसरी दुनिया दिखती हो जैसे। अर्जुन को वह विस्फोट लगा था, उसने अपने चारों ओर काली अग्नि की परतें बनाई थी, लेकिन उसमें से एक टूट गई थी, कंधा जला था, पीठ में एक गहरा घाव था, लेकिन वह खड़ा था। नागकन्याएं जो थोड़ी दूरी पर थी उस विस्फोट की बाहरी लहर से धक्का खाकर गिरी थी। कालिंदी के माथे पर एक कट था, मंदाकिनी की भुजा पर जलन। अर्जुन उस सुरक्षा घेरे के पास गया, वह मोरकन्या जो अभी अभी मोर से बनी थी जमीन पर थी, उसके शरीर पर वह रूपांतरण का अधूरापन था, कुछ जगह नीले टूटे मोरपंखों के अवशेष, उसकी सांसें थी लेकिन बहुत उथली। अर्जुन उसके पास बैठा, जब उसने उसे उठाया उसका हाथ उसकी कलाई के पास गया और कंगन ने उसे छुआ। एक पल अर्जुन रुक गया, उस धातु को उसने एक जन्म में अपने हाथों से दिया था, उस पर उकेरे गए अक्षर उसने स्वयं चुने थे, एक नाम जो केवल उन दोनों के बीच था, माधवी। वह नाम, वह चेहरा, पिछले जन्म की वे स्मृतियां जो इस जन्म में धुंधली पड़ती जा रही थी, वे एकाएक इतनी स्पष्ट हो गईं। लेकिन अभी उस नाम को जगह नहीं थी, अभी यह स्त्री मर रही थी। उसने अपनी काली अग्नि सावधानी से सूक्ष्म रूप में उसके भीतर उतारी, वह अग्नि जो जलाती थी वह चिकित्सा भी कर सकती थी। घाव सिकुड़ने लगे, तुमने उसे बचाया, आवाज पीछे से आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, दो स्त्रियां, उनके शरीर पर चोटें थीं, विस्फोट की, भागने की। एक के होंठ पर दो चोटें थीं, एक पुरानी एक नई। दोनों के वस्त्र क्षत विक्षत थे, लेकिन उनकी आंखों में जो था वह थकान नहीं थी, वह सतर्कता थी। और उसके नीचे वह प्रश्न जो तब उठता है जब कोई अजनबी कुछ ऐसा करे जो अपेक्षित न था। अर्जुन ने उन्हें देखा एक पल, उनकी प्रकृति वह समझ सकता था। नागकन्याएं, वह उसने नहीं कहा, वह केवल सोचा। हाँ, उसने केवल यही कहा उस पहले प्रश्न के उत्तर में। कालिंदी ने एक पल उसे देखा, फिर उस बेहोश स्त्री को, फिर वापस। तुम कौन हो अर्जुन, वह उत्तर था, उससे अधिक कुछ नहीं था। और उस क्षण, उस टूटे हुए जंगल में, उस विस्फोट के बाद की नीरवता में, वर्षा की निरंतर लय में, चार अलग अलग दिशाओं से आए चार अजनबी एक ही जगह पर थे। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन वे यहाँ थे। ऊपर उस प्राचीन वृक्ष के तने में दौड़ती बिजली की नीली रेखाएं एक पल के लिए एकाकृति बनाती सी लगी। एक आंख जागती हुई, देखती हुई, उसकी काली अग्नि सावधानी से सूक्ष्म रूप में उस स्त्री के भीतर उतरती रही। घाव भरते गए,